ओम शांति। आज ड्रामा अनुसार बहुत शुभ दिन है। क्यों हा? बाबा आ रहे हैं और दूसरा बसंत पंचमी का दिन है। सुना है आपने कभी बसंत पंचमी पर सर्दी कम होनी शुरू हो जाती है और नए नए फूल पत्तियां आनी शुरू हो जाएंगी। तो आज का दिन है फिर से एक तो अपने बारे में, ईश्वरी सेवा के बारे में, आपसी संबंधों के बारे में पुनर्अवलोकन करने का समय। विशेष दिन है तो कुछ विशेष बात होनी चाहिए। और दूसरा है, जैसे आपने बताया सभी ने, कि आज विशेष बाबा से मिलन मनाने का दिन है। सोचते ही बाबा से मिलन मनाने का दिन, जैसे ही सोचते हैं तो दिल में क्या होता है, खुशी के बाजे बजने शुरू हो जाते। किससे मिल रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, जिसको सारी दुनिया ढूंढती रहती है। संत महात्मा भी उनको पाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, मिलता है उनको, मिलता है। तो बाबा के बच्चे कितना सहज रीति मिल गया, मिला मिला तब तो यहां आए हैं ना। सन्मुख मिलने भी आए हैं और मिलना हुआ है तो आए हैं, दोनों बातें। तो आज के दिन विशेष इसी उमंग में सारा दिन रहना है कि हम किससे मिलने आए हैं, जा रहे हैं नहीं, मिलने आए हैं। और उस मिलन में क्या समाया हुआ है, उस मिलन में है दिल की खुशी। दिल गदगद होता है, देखना आप, नोट कर लेना, बाबा की याद में जब से आप बैठेंगे, सुबह को भी बैठे, मुरली भी सुनी और फिर दिन भर भी वही मन में रहेगा कि आज हम बाबा से मिलन मनाने आए। तो बाबा के सिवा दिल में कुछ नहीं रहता है बस। और मुरली का सार भी वही मिलता है, आप कोई भी मुरली लेके देख लो, किस तारीख की भी ले लो, बाबा उसमें बार बार इस बात पर ध्यान खिंचवाता है, बच्चे खुद को आत्मा निश्चय करके बाप को याद करो। इस याद के बल से ही आप आत्मा फिर से सतो प्रदान बन जाएंगे, इस याद के बल से ही विश्व का वातावरण चेंज होगा, याद के बल से ही पांचों तत्व पावन बन जाएंगे, याद के बल से ही पुरानी दुनिया बदलकर फिर से सत्ययुगी दुनिया स्थापन हो जाएगी। छोटी सी बात है, याद करना तो कोई कठिन नहीं है, छोटा बच्चा भी माँ बाप को याद करता है, बड़े हैं तो वो छोटे बच्चों को याद करते हैं, सारा जीवन चाहे सत्ययुग से लेकर के आज दिन तक सारा जीवन आप देखेंगे, कोई एक पल भी ऐसा नहीं होगा जब हमने याद नहीं किया हो, चाहे किसी को भी किया हो। लेकिन अनेक जन्म जो हम देह के संबंधों में देहधारियों के साथ कर्म में आने के कारण उनकी याद बड़ी सहज लगती है। जब बाबा कहता है स्वयं को आत्मा निश्चय कर, मुझे याद करो, तो कई क्वेश्चन उठने लगते हैं, कैसे करें कैसे करें। ऐसी बात करते हैं जैसे कि बहुत मुश्किल काम है। है मुश्किल, जिनको सहज लगता जरा हाथ खड़ा करें, सहज लगता जिनको। अच्छा, तो मेरे को क्लास कराने की जरूरत नहीं है फिर। अपने लिए ताली बजा लो और क्या। तो आज का दिन ये जो टॉपिक दी हुई है वो मेरे को समझ में तो आई नहीं है, सच्ची बता देता हूं। अव्यक्त पालना का रिटर्न, फॉलो फादर। अव्यक्त बाप दादा ने 47 साल कोई छोटी बात नहीं है, 47 साल से, और उससे पहले बाबा की साकार की जो पालना थी, जो उस समय भाई बहने थे, 33 वर्ष उन्होंने की। कितने हो गए टोटल वर्ष? 80 साल हो गए। 80 साल से बाप दादा पालना कर रहे हैं। किसकी पालना करते हैं? हम कोई छोटे बच्चे तो है नहीं। तो साकार में पालना की बात नहीं है, पालना है आत्मा को शक्तिशाली बनाने की। बाप स्वयं सर्वशक्तिवान है, तो सर्वशक्तिवान बाप बच्चों को मास्टर सर्वशक्तिवान बनाना चाहता है। वो पालना बाबा ने बड़े अच्छे ढंग से दी है। मैं सोचता हूं जो साकार बाबा के साथ 10 साल बिताए थे, उस समय की जो पालना थी वो अद्भुत पालना थी, अनोखी थी और बहुत ही सुंदर स्वीट थी। बाबा के साथ, मम्मा के साथ, दादी प्रकाशमणि, दीदी मनमोहिनी, दादी गुलजार, दादी जानकी, दादी मनोहर इंदिरा, बड़ी बड़ी दादियां जो भी थीं, क्या पालना उनकी मिली उस समय। इतना सुख मिला, इतना आत्मिक सुख मिला, सच्ची बताएं आपको। और आत्मिक सुख के साथ साथ बहुत अच्छी अच्छी टोलियां भी मिलती थी। टोली मिलती है रोज, हाँ, मधुबन में तो मिलती है ना। आज मिली? कौन सी टोली थी आज? वो भूल भी गए खाके। इसका मतलब टोली खाने समय बाबा को याद किए बिना खाई। तो बड़ी दादियों से, बड़े भाइयों से, दादाओं से पालना क्या मिली? उनका निस्वार्थ भाव का स्नेह मिला। जो रूहानी स्नेह जिसको कहा जाए वो मिलता है, और वो स्नेह के कारण दिल होती और मिले और मिले, तो वो ही बाबा की दृष्टि, स्नेह भरी दृष्टि, उसमें जादू था, जादू परिवर्तन करने का, जिन्होंने भी अनुभव किया होगा, चाहे बहनों के द्वारा सेंटरों पर, दादियों के द्वारा या बड़े भाइयों के द्वारा, वो दृष्टि में बहुत राज समाया हुआ है। जितना हम अंदर से मन मना भव होकर रहते हैं, मन बाबा में टिका रहता है, उसके फल स्वरूप आत्मा महसूस करती है कितना शक्तिशाली, कितना प्रेम भरा, कितना आनंद भरा बाबा का संबंध है हमारे साथ। इस संसार के अंदर सब कोई यही ढूंढते हैं, ऐसा कोई संबंध मिले, ऐसा कोई साथी मिले। लौकिक में मिलते तो हैं, लेकिन सभी को अनुभव होगा सदा एक रस मीठा अनुभव नहीं होता है, थोड़ा मीठा और थोड़ा थोड़ा खट्टा भी होता है। लेकिन बाबा के साथ का जो अनुभव है, या बाबा के जो ऐसे बच्चे जो हम सब के सामने मिसाल के रूप में हैं, उनका जो संबंध मिला है आज दिन तक, उसमें नो कंप्लेंट्स, कोई कंप्लेंट नहीं है। उन्होंने सभी ने बहुत निस्वार्थ भाव से ऐसी मीठी मीठी दृष्टि दी है और इतना प्यार दिया है, उसका रिटर्न क्या दे सकते हम। चाहे बाबा ने अव्यक्त रूप से दृष्टि दी है, अव्यक्त रूप से वाणी चलाई है, आप देखेंगे अव्यक्त वाणियों के अंदर कितना उमंग उत्साह भरते हैं बाबा, और कितनी क्लैरिटी है उनके अंदर, कितनी डेप्थ है ज्ञान की। एक एक बात को इतना गहराई से बाबा एक्सप्लेन करते, वो कभी सोचा ही नहीं हमने। पहले कोई शास्त्र अर्थ करता था तो बड़ा अच्छा लगता था, बहुत खुशी होती थी। क्यों? कि शास्त्रों को हम तो समझ नहीं पाते थे वैसे, लेकिन कोई उसका अर्थ करके सुनाए, सरलता से सुनाए, तो दिल को छू जाता था। वही चीज मैं देख रहा हूं कि साकार में बाबा ने, बाबा तो वही है, कोई अदली बदली नहीं हुआ है कहीं, बाप दादा वही हैं, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा, वो आत्माएं तो वही हैं। सिर्फ बाबा ने खुद उस बात का जवाब दिया था कि पहले साकार को अपने लिए समय देना पड़ता था, अब सारा ही समय बच्चों के लिए है। और आपको सभी को इस बात की बड़ी खुशी होगी कि बाबा के अव्यक्त होने के बाद देश और विदेश में बाबा के बहुत बच्चों ने अपना अलौकिक ईश्वरी जन्म लिया। अगर सिर्फ साकार के द्वारा ही सारी पालना होती, आप सोचिए थोड़ा, तो इतने सारे बाबा के बच्चे, उनकी पालना कैसे हो सकती। संख्या को देखें तो अव्यक्त रूप से बाबा ने बहुत क्लियर किया था, जब अव्यक्त हुए थे उन्हीं दिनों में, शुरू में, कि पहले तो बाबा को अपने लिए थोड़ा टाइम देना पड़ता था साकार को, अब तो सारा ही टाइम बच्चों के लिए है। और दूसरा, बाबा का एक बहुत सुंदर वायदा, बाबा का अपना वायदा हम बच्चों के साथ, कि आप संकल्प करो बाबा तुम्हारे सामने होगा। दिल से बाबा कहो, बाबा आपके संग होगा। प्यार से बोलो मीठे बाबा, तो मीठा बाबा आपका मुख मीठा कर देगा। इतना सहज बाबा ने कर दिया, लेकिन बात एक ही है कि उसके ऊपर उसकी वैल्यू हमारे दिल में कितनी है। क्या उस चीज को हम समझते हैं? जितना प्यार से बाबा को याद करेंगे, अब याद करने का मतलब दुनिया के अंदर याद कैसे करते हैं, रट लगाते हैं ना, ओम ओम या तो करेंगे या शिव शिव कहेंगे या श्री कृष्ण का लेंगे नाम। तो बाबा कहता आवाज भी नहीं चाहिए। क्यों भला ऐसा कहा? आवाज तो करने में कोई हर्ज नहीं था, कारण क्या है? तो बाबा ने बहुत सूक्ष्म में, बहुत महीनता से इस बात को हम बच्चों को समझाया कि हम अपनी आवाज भी करेंगे ना, तो उसमें भी डाइवर्शन हो जाएगी आपके थॉट्स की, ध्यान फिर अपनी आवाज में भी जाएगा और कहीं शब्द ऊपर नीचे हो गया बोलते बोलते तो रुक जाएंगे, लगातार नहीं होंगी। लेकिन बाबा कहता है मुझे आप स्वयं को आत्मा निश्चय कर निरंतर मुझे याद करो। निरंतर, निरंतर का अर्थ समझते हैं ना, निर अंतर, अंतर नहीं चाहिए, अंतर नहीं चाहिए माना कंटिन्यूटी है, लगातार है। तो भक्ति मार्ग में भी ऐसी बातें आती हैं कि जब किसी को रस बैठ जाता है तो उसमें खो जाते हैं। कईयों के ऐसे पिक्चर आपको देखने को मिलेंगे, आधी आंख बंद होगी, बड़ी उनकी जो मुद्रा देखने में आएगी बहुत शांति की, बहुत खुशनुमा। और वही चीज हमने बाबा के चेहरे पर भी देखी, साकार में भी देखी और अव्यक्त की भी देखते रहते हैं। जिस क्षण से बाबा की पद्रमणी होती है तब से लेकर के आप नोट करेंगे, बाबा हालांकि रथ के द्वारा मिलते हैं, गुलजार दादी के द्वारा मिलते हैं, लेकिन उस समय वो रथ बाबा का होता है, बाप दादा का। तो बाप दादा का अपना जो निज स्वरूप है वो दादी के नैनों से नजर आता है। बच्चों को देख करके अपनेपन की वो जो उनकी मुस्कान है वो देखने में आती है। नैनों के अंदर जो शक्ति देने का एक विशेष बाबा का खास, बच्चों को शक्तिशाली बनाने के लिए नैनों के द्वारा जो वो दृष्टि देते हैं, बाबा की पद्रामणि होती है तो एकदम से वाणी शुरू नहीं होती, काफी टाइम तक बाबा इधर 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 इधर, ताकि कोई बच्चा रह न जाए। इतनी लगन से सभी आए हैं तो उनको महसूस हो कि बाप दादा से मेरी रूहानी मुलाकात हुई। ऐसे तो आजकल टीवी से सब सेंटरों पर भी तो देखते हैं ना, पर टीवी पे देखना फिर भी कहते नहीं, डायमंड हॉल में आकर के बाबा से मिलते हैं, इसके जैसा मिलन कहीं नहीं है। तो जो बच्चे बाबा से डायमंड हॉल में मिलने आते हैं, क्या हुए? वो रूहानी सच्चे सच्चे डायमंड हो गए, बाबा से डायमंड मुलाकात करते हैं। तो बाबा क्या करता है, मैं वो इसी बात से आपके सामने रख रहा हूं कि बाबा ने इतने वर्षों में जो पालना दी है उससे हमें कहां तक लाया है। पहले हम ये सोचे कि हमें कहां तक लाया, फिर रिटर्न देने की बात आएगी। तो बाबा ने फ्लॉलेस डायमंड बना दिया सभी बच्चों को। अभी कुछ छोटी सी भी किसी से ऊपर नीचे बात होती है तो फट से अपने आप को चेक करते हैं। अब ज्यादा मार्जिन नहीं रही है कि हम कोई बड़ी गलती करें फिर बाबा क्षमा करे, फिर उसके बाद साकार मुरलियों में थोड़ी ऐसी बातें आती है ना, तो कभी कभी उसको पढ़ने के बाद ढीले होने शुरू हो जाते हैं, वो नहीं है। अव्यक्त मुरली जो लास्ट तक चलती आई है उनको आप देखेंगे लेटेस्ट, उसके अनुसार बाबा ने बच्चों को सारा ज्ञान दे दिया। पहले सुनते थे, दादियों से ही सुनते थे ऐसी कहानियां कि चिड़ियों ने समुंदर को ही सुखा दिया, इतना पानी पी लिया। अब पानी पीने की तो बात नहीं है, बाबा से जो ज्ञान अमृत मिलता है, ज्ञान के महावाक्य सुनते हैं, ज्ञान की मुरली सुनते हैं, जो बाबा के पास ज्ञान सागर के रूप में या ज्ञान सूर्य के रूप में जो भी उनके पास ज्ञान हो, वो सारा ही साकार और अव्यक्त मुरलियों के द्वारा इतने वर्षों में जो सारा बच्चों को दे दिया है। आज अगर उन सब मुरलियों की किताबें बना करके रखे ना, तो कम से कम एक साइड तो इसकी डायमंड हॉल की एक साइड पूरी वो किताबों से भर जाएगी, इतनी मुरलियां चली हुई है। और एक एक मुरली की गहराई कितनी है, तो उसका रिटर्न क्या देंगे? बाबा के बच्चे हम सब कौन है? बाबा के सभी बच्चे कौन है? दाता के बच्चे क्या हैं? हाँ? मास्टर दाता है ना, क्या कहते हैं? बाबा के नूरे रतन हैं, लेकिन दाता के नाते से क्या है? मास्टर दाता है ना। तो बाबा की इतनी जो पालना मिली है जिससे बाबा के जैसे आप कह रहे हैं नूरे रतन बन गए हैं, बाबा के नैनों के नूर बन गए हैं, क्योंकि बाबा के नूरे रतन बनना माना एकदम अमूल्य जीवन बना लेना, उसकी भेंट किसी से नहीं कर सकते लौकिक में अभी। तो उस नाते से पहले तो अपना सोमान चाहिए, इस सोमान में अपने आप को स्थित करें। रिटर्न की बात आ रही है तो रिटर्न में क्या करना है कि बाबा ने जो इतने सोमान दिए हैं साकार में भी बहुत सुंदर शब्दों में और अव्यक्त में भी, एक एक मुरली के लास्ट में इतनी सुंदर शब्दों में बाबा हम बच्चों को टाइटल देते रहे हैं। तो अपने सोमान को पहचाने और सोमान में स्थित होने का एक निश्चय करें, निश्चय पक्का, उस सोमान से इधर उधर होने की जरूरत नहीं है। दूसरा है कि बाबा सोमान में रहते हुए उनकी एक विशेष बात जो आप देखेंगे कि जो बाबा के पास ज्ञान रतन है वो मैं बच्चों को कैसे दूं। दूसरी दूसरी बातों में बाबा का इतना इंटरेस्ट नहीं होता, भले हम लोग खेल पाल करते हैं, कभी कभी रू रोहन कर लेते हैं, कभी गीत सुना देते हैं, वो सब होता है, पर बाबा का पूरा अटेंशन कि जो बाबा ने इतनी पालना दी है उसकी रिजल्ट क्या है। रिजल्ट बाबा को चाहिए कि खुली दिल से बाबा को कहें, बाबा मेरी तरफ से आपको कोई भी ऐसी बात सुनने को नहीं मिलेगी, कोई मेरी रिपोर्ट आपके पास नहीं आएगी, कोई आकर के आपको नहीं कहेगा बाबा इसने मेरे को तंग किया, इसने मुझे अपशब्द बोले, इसने मुझे ऐसा किया, वो नहीं होगा। सबसे पहली बात तो ये है कि ब्राह्मण जीवन में बाबा को सामने रखते हैं, जैसे बाबा इतना सब अथॉरिटी होते हुए भी सुप्रीम फादर, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम सतगुरु, हाईएस्ट अथॉरिटी, मैं धर्मराज का नाम नहीं लेता हूं इसमें, हाईएस्ट अथॉरिटी होते हुए भी हम बच्चों को किस शब्दों में एड्रेस करते थे, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों को, याद प्यार, और फिर उसके लास्ट लाइन क्या है, रूहानी बच्चों को रूहानी बाप की नमस्ते। जवाब देते हैं उनका, फिर कई बार क्लास में सुन लेते हैं, जवाब नहीं देते। तो आप सोचिए, बाबा इतनी बड़ी अथॉरिटी, दूसरा कोई तो भगवान हो नहीं सकता, दूसरा कोई तो परमात्मा का स्वरूप नहीं है, जो हैं उनके प्रति हमारी क्या भावना रहती, क्या श्रद्धा रहती है, और बाबा की श्रद्धा क्या रहती है। बाबा की ये एक ही भावना है, क्या भावना है बाबा की, कोई भी बताए, हाँ छोटे बच्चे बैठे आगे बताओ क्या भावना है, हाँ? बाबा की एक ही भावना है कि मेरे बच्चे मेरे समान बन जाए। आप समान बनाते हैं, बल्कि बाबा तो इतने तक भी कह देते हैं, बच्चे तुम तो सतयुग में जाकर के राज करोगे, बाबा तो सतयुग में आएगा ही नहीं, मेरे से भी बड़े हो गए आप, इतना बाबा मान देता है। हां ताली बजा लो अपने लिए। लेकिन ये बात पक्की कर लें कि बाबा जो चाहता है हम सब बच्चों से, कि हम बाबा की ज्ञान की बात को अच्छी तरह से समझ करके, बाबा के साथ योग युक्त होकर के, और अपनी जीवन को इतना सुंदर, श्रेष्ठ, दिव्य बना दें कि कोई दूर से भी देखे तो समझ जाए ये कोई ऑर्डिनरी लोग नहीं है। लेकिन इसका ध्यान शांतिवन में जरूर रहता है, मधुवन में रहता है, जब ट्रैवलिंग करते हैं तब क्या होता है, हाँ? तो ट्रैवलिंग करने समय आपको सब देखते हैं, यहां तो आपस में है सभी, ट्रैवलिंग के टाइम पर कैसे चलते हैं, वहां अनजान लोग मिलते हैं, अनजान व्यक्ति मिलते हैं, उनके प्रति क्या भावना रहती है। तो बाबा का दिया हुआ जो ज्ञान है, बाबा की दी हुई जो श्रीमत है, उसका रिटर्न यही है कि जिसको भी देखें मन में भावना यही रहे, ये बाबा का बच्चा है लेकिन ये पहचानता नहीं है। इनको भी अगर ये पहचान मिल जाए तो कितनी अच्छी बात है। लेकिन समय देख करके, कोई अपनी बैग बैगेज लेकर के रखने जा रहा है और आप उसको ज्ञान देने लगेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा वो। तो इसलिए ये बातें बहुत गहराई से सोचने की हैं कि इतनी ऊंची हस्ती, इतनी तो क्या, सबसे ऊंची हस्ती, और वो हमारे क्या कहें, हमारे सामने ऐसे आकर के मिलें, हमसे बात करें और हमें ज्ञान की बातों से भरपूर कर दें, तो उनका रिटर्न हम क्या दे सकते हैं। एक तो बाबा को रिटर्न में दिल से सदा थैंक्स देते हैं कि बाबा आपने हमें कहां से निकाल करके, मैं नहीं जाता उस डिटेल में कि कहां थे कहां नहीं थे, लेकिन कहां से निकाल करके सबसे पहले तो सबसे सुंदर ईश्वरी परिवार दे दिया हमें, ये सबसे बड़ी बात। ईश्वरी परिवार नंबर वन परिवार है, सारे विश्व के अंदर ऐसा परिवार नहीं है जितना ईश्वरी परिवार है। तो एक तो पहले तो यही सबसे बड़ी देन है, ज्ञान सुनने और मेडिटेशन करने के बाद की। ऐसा संग मिल गया हमें जिनको और कोई लालच नहीं है, कोई लालसा नहीं है, बस एक ही बात मन में कि हम बाबा की याद में रह करके, बाबा की श्रीमत पर चल करके और बाबा की जो आज्ञा है इस विश्व को परिवर्तन करना है, इसको फिर से सतयुग बनाना है, कलयुग को परिवर्तन करना है। ये बहुत बड़ा काम है, छोटा नहीं है। उसकी वो भक्ति मार्ग में मिसाल है, कौन सी, श्री कृष्ण के साथ हर एक ने एक एक उंगली का सहयोग दिया, यही है ना। तो एक एक उंगली का मतलब क्या, कि आप एक तो बाबा के याद की तरफ ध्यान खींचेंगे अपना, याद का सहयोग, और दूसरा शुभ भावना का सहयोग, हरेक के प्रति शुभ भावना। शुभ भावना होगी तो फिर उसको ज्ञान देना भी सहज लगेगा। जिसको ज्ञान देंगे उसकी रिसेप्टिविटी बढ़ जाएगी अगर आपकी भावना अच्छी होगी तो। और तीसरा है आपकी अपनी धारणा से उस पे असर होने वाला, तो अपने ऊपर बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। इतने तक साकार बाबा ने हम बच्चों को चार्ट कैसे लिखना है वो सिखाया था, कितने वर्षों तक बाबा लिखवाते रहे थे। तो आज भी मैं देखता हूं कि अगर कोई अपना चार्ट नोट करता है, ध्यान देता है, तो उसकी उन्नति फास्टर होती, जल्दी होती है। और अगर ध्यान नहीं देते तो फिर कई ऊंचाई निचाई जीवन में होती है, फिर टेंशन में आ जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं। इसलिए बाबा की याद में अपने मन को लगाना, मुरली पूरी अच्छी तरह से स्टडी करके उसको धारण करना, ब्राह्मण जीवन का जो आनंद है उसको मन ही मन में एप्रिशिएट करना। बाबा को थैंक्स है जो ऐसे ही नहीं, बाबा कहते हैं ब्राह्मण जीवन डायमंड जैसी है, डायमंड एज में डायमंड जैसी जीवन जिसकी बन गई उसको और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि डायमंड सबसे अमूल्य चीज मानी जाती है। तो सभी बहने भाई बाबा के सभी चैतन्य डायमंड क्या करेंगे, बाबा के कदम पे कदम रखें, उसको कहते हैं फॉलो फादर। जैसे साकार बाबा ने अपने आप को एग्जाम्पल्स बनाया, पहले खुद करके फिर दिखाया, ऐसे औरों की मिसाल भी आती है, गांधी जी की मिसाल भी आती है। कोई माता जी हो, अपने बच्चे को ले गई उनके पास के बापू जी ये गुड़ बहुत खाता है, सुनी हुई कहानी, गुड़ बहुत खाता है, तो उन्होंने कहा अच्छा एक महीने के बाद इसको लाना मेरे पास। एक महीने के बाद माता जी उसको लेके गई तो बापू गांधी ने उनको क्या कहा, बच्चे गुड़ नहीं खाना क्योंकि ये अच्छा नहीं है। तो माता जी से तो रहा नहीं गया, कहा भाई ये एक महीना पहले भी आप कह सकते थे। तो बापू ने क्या जवाब दिया कि मैं खुद गुड़ खाता था तो मैं कैसे कहूं उसको कि नहीं खाए। तो ये बाबा ने बहुत ही अच्छी बात हम बच्चों को सिखाई है कि पहले सो परिवर्तन फिर विश्व परिवर्तन। अपने को परिवर्तन करना है, खुद को जितना पता होता है कि मेरे अंदर परिवर्तन करने की क्या चीज है, कैसे करूं, वो दूसरा कोई नहीं कर सकता है। और इसमें खास देखा गया है हम सब के अंदर एक विशेष शक्ति है, उसको कई लोग, कईयों के ख्याल में ही नहीं आती कि वो शक्ति क्या है और कब यूज करनी है। वो शक्ति है इंट्यूशन की, अंदर ही बाबा की टचिंग मिलती है। कई बार ऐसे अनुभव होते हैं कि बाबा कोई कार्य कराना चाहता है, वो अंदर अंदर बहुत जैसे उसके लिए बुद्धि खींचती है, उसको क्लियर करके आपस में किसी से बात करके क्लियर करना जरूरी है कि क्या करना चाहिए इसमें। लेकिन वो बाबा जो चाहता है, बाबा से मन लगा के रखेंगे तो आपको धीरे धीरे अभ्यास करते करते ऐसे अनुभव हो जाएंगे कि जैसे बाबा की श्रीमत आपको मिल रही है और आप उसके अनुसार बाबा की सर्विस में अपना टाइम देते हैं। और साथ साथ इंटरपर्सनल रिलेशंस जो हैं, आपसी संबंध जो हैं, चाहे लौकिक परिवार में हैं, चाहे अपने कारोबार की जगह में हैं, चाहे सेवा केंद्र पर हैं, वो कितने सुखद बन जाते हैं, कितने मीठे बन जाते हैं, कितना श्रेष्ठ बन जाते हैं। एक बात जो मेरे दिल में रहती है कि 5000 साल के बाद, वो तो 5000 साल का साइकिल कहते हैं, उसमें कई उलझ जाते हैं, मैं कहता हूं 5000 साल के बाद हमारे भाई बहने मिले हैं, कितना इनके साथ हमारा प्यार होना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, थोड़ा सा किसी से नाराज होते हैं तो क्या करते हैं, वो सामने से आ रहा होगा और दूसरी साइड चले जाएंगे, रास्ता चेंज कर देंगे। ऐसा होता है ना, होता है। तो ये परिवर्तन चाहिए, बाबा को यही रिटर्न चाहिए। साकार बाबा को प्रैक्टिकल देखा था, हम बच्चे कोई एकदम बाबा के पास आए तो सब संपूर्ण बन के नहीं आए थे, सीख रहे थे, कई बातें सीखने की थी, लेकिन बाबा इतना प्यार से इशारा देता था, इतना प्यार से, कभी डिटेल में नहीं जाएगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किसने क्या किया, किसने कुछ नहीं। बच्चे भी बाबा को अपनी दिल से बहुत प्यार से कह देंगे बाबा ये भूल हो गई, बाबा इतना ही कहेंगे, पहले साइलेंस रखेंगे, दृष्टि देंगे, आत्मा को जैसे मैग्नेटाइज करेंगे अच्छी तरह से, तो फिर उसके बाद कहेंगे बच्चे जो हुआ सो ड्रामा, आगे के लिए ध्यान रखना, बस आगे के लिए ध्यान रखना। तो आज दिन तक अगर कोई ऐसी बात अपने साथ हुई हो, हाँ, कोई भी हुई हो, कहीं दूसरे की ज्यादती होती, कभी कहीं अपनी ज्यादती होती, तो वो दिल ही दिल में बाबा को ऑफर करके फिनिश कर दो। बसंत पंचमी माना सब बसंत के रूप में वापस आ जाए। वो कहते हैं ना, रंग दे बसंती चोला माए मेरी, यानी रंग दे बसंती चोला। वो आज प्रैक्टिकली अपने संस्कारों का चोला जो है वो बसंती चोला बना लीजिए आप। ओम शांति। अभी थोड़ा टाइम क्या करेंगे, थोड़ा इस बातों को सोचेंगे भी और उसमें बाबा की शक्ति की मदद लेंगे। बाबा के साथ मन लगा के आत्मा को खूब लाइट और माइट से भरपूर करेंगे। सीधे सभी बैठें, अगर किसी को थोड़ी बहुत झपकी आ रही हो थोड़ा उठ करके खड़े होके फिर बैठ जाएं ताकि वो स्फूर्ति आ जाए। उठो, सभी उठो। डॉक्टर प्रेम मसंद ऐसी एक्सरसाइज बहुत कराता है। हाँ, बहुत अच्छा। ठीक है, अभी फ्रेश, अभी खड़े खड़े नहीं उड़ना है, बैठ करके उड़ना है। बैठिए। अभी मन में क्या गीत गाएंगे, हाँ? कौन सा गीत गाएंगे? वैसे वो भोग का गीत है पर बड़ा अच्छा है, हम उड़ के चले जाएं। बैठो माताओं, बैठ जाओ प्लीज। मैं देख रहा हूं इस ग्रुप के अंदर माताएं बहनें सब भाई जो भी आए हैं रुचि से आकर के बाबा के ज्ञान की बातें सुन रहे हैं, बहुत प्यार से अभ्यास कर रहे हैं। और बाबा को भी यही चाहिए। मैंने देखा साकार बाबा को देखते थे तो बाबा के समय भी जब बाबा वाणी चलाते थे तो थोड़ा किसी ने इधर उधर देखा तो बाबा कहेंगे इसको मुरली का रस नहीं है, इसको पूरी पहचान नहीं है। तो अभी सभी ऐसे ही मुस्कुराते हुए, क्योंकि मुस्कुराने से मन बहुत लाइट रहता है। लाइट मन से स्वयं को जान करके मैं आत्मा भी लाइट स्वरूप हूं और मैं लाइट की दुनिया में। कहां जाएंगे? पहले जाएंगे सूक्ष्म वतन में, अव्यक्त बाप दादा से वहां मुलाकात करके फिर वहां से बाबा को साथ लेकर के जाएंगे अपने प्यारे परमधाम में। 10 मिनट का बहुत अच्छा टाइम, खुशी खुशी और आत्मा को बिल्कुल लाइट और माइट से भरपूर करेंगे। सूक्ष्म वतन में स्वयं को फरिश्तों के स्वरूप में, फरिश्ता बाप दादा को सन्मुख देखते, बाबा से नैन मुलाकात करते, सूक्ष्म वतन का विशेष आनंद स्वरूप ऐसी स्थिति में अपने मन को लगाएं। आपके मन के तीसरे नेत्र से अपने भविष्य स्वरूप को देखें। पहले फरिश्ता स्वरूप को बाबा ने बड़े अच्छे शब्द कहे हैं। फरिश्तों का हड्डी मांस तो नहीं होता, लेकिन बहुत शक्तिशाली लाइट स्वरूप, लाइट और माइट के स्वरूप में अपने आप को देखें। अभी बाप दादा के साथ अपने मन के तीसरे नेत्र से स्वयं को आत्मिक रूप में देखें। बहुत शक्तिशाली चमकता हुआ सितारा कहो, डायमंड कहो, स्वयं को भी देखें, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा उन दोनों को भी देखें और उनके संग में अपने स्वीट होम में मन को टिकाएं। दिल ही दिल में बाबा से बात करें। इतना समीपता, इसका अनुभव आपकी किरणें मुझ आत्मा को भी आपके समानता में ला रही हैं। ज्योति की दुनिया में आपके संग में ज्योति की तरह लाइट और शक्तिशाली स्वरूप, उसके अनुभव में मन खुश हो गया। ऐसा बाप दादा से मिलन और उसके फलस्वरूप आत्मा शक्तिशाली बन गई। अब अपनी लाइट और माइट बाबा के पालना के रिटर्न में सारे विश्व की आत्माओं को, जीव जंतुओं को, पांच तत्वों को शक्तिशाली किरणें परमधाम से नीचे इस सृष्टि के चारों तरफ दृढ़ता से फैलानी है। भल बाबा की याद में यहां बैठे हैं, पर यहां बैठे भी सारे विश्व की सेवा कर रहे हैं। ये बाबा के प्यार का रिटर्न है।
सुकर्मों के बलकार ही सतयुग में सतयुग में अब तुम्हें आ